नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में। और आज हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं मेजर गौरव आर्य, और हम बात करने जा रहे हैं चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हमारे जनरली हमारे पड़ोसियों के बारे में और थोड़ा बहुत और देश विदेश के बारे में। आपका स्वागत है गौरव जी। तो अब बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग प्रकट हो गए, लेकिन मैं उस फोटोग्राफ के ऊपर जो है, जो भी फोटोग्राफ या वीडियो दिखाया जा रहा है, उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो आज का है या पुराना है। तो इसलिए जो प्रकट होने की बात है या गायब होने की बात है, दोनों में कैसे पता किया जाए कि वो गायब हुए थे या प्रकट हुए हैं या नहीं हुए हैं? हाउ टू फाइंड आउट चाइना में कैसे पता किया जाए?
एक बार एप्पल वाला कुछ साल पहले की बात है सर। एप्पल के लोग गए थे चाइना और लोगों ने बोला कि वो बाजार में घूम रहे थे, तो एप्पल स्टोर, एप्पल वाले एप्पल स्टोर के अंदर गए। और ये मैं चाहता हूं कि आपके जो दर्शक हैं वो एक बार गूगल कर लें। और वो लोग जब गए वहां पे तो उन्होंने देखा कि स्टोर है, बहुत अच्छा स्टोर है। बट देन सडनली दे रियलाइज, एप्पल वाले थे या अमेरिकन थे कुछ, दे सडनली रियलाइज दैट एप्पल का कोई स्टोर तो है नहीं चाइना में। चाइना ने पूरे एप्पल के स्टोर की चेन फेक, एक एप्पल का फोन फेक नहीं करा, उन्होंने पूरी एक कंपनी फेक कर दी जिसमें वही लोगो, वही फोन, सब कुछ वही, लेकिन टोटली फेक। उसका एप्पल से कोई लेना देना था नहीं, वो बेच रहे थे धनाधन। तो ये तो चाइना की बात है वेर एवरीथिंग कैन बी फेक्ड। मैं ये कहना चाह रहा था कि सर सबसे बड़ी, जो सबसे अच्छा मुझे लगता है एनालिसिस इस पूरे केस में शी जिनपिंग का मैंने करा, और मेरा एनालिसिस था कि मुझे नहीं पता। देखिए ये भी एक एनालिसिस है, मैंने बोला मुझे नहीं पता। लोग कह रहे थे सर गायब हो गए, 80 किलोमीटर की कॉन्वॉय है और फलाना जनरल है और यू नो इसने कर दिया। मैंने बोला हो सकता है, इट इज हाईली पॉसिबल, क्योंकि चाइना में दीज थिंग्स कैन हैपन। बट एट द सेम टाइम आई सेड आई डोंट नो, क्योंकि हमारा देखिए साहब ऐसा है कि हमारे एम्बेसी है वहां पे, हमारा एम्बेसी है चाइना में, 150 से ऊपर और एम्बेसीज है वहां पे चाइना में, हमारे डिफेंस अटैचेज हैं, 150 से और ज्यादा डिफेंस अटैचेज हैं। अगर कोई ये बोले अच्छा दे आर अलाउड टू यूज व्हाट्सएप, उनका व्हाट्सएप चलता है चाइना में, यूनाइटेड नेशंस वालों का व्हाट्सएप चलता है, तो अगर कोई ये बोलेगा कि साहब यू नो पूरा का पूरा जो मामला है चीन के साथ हमें पता ही नहीं है कि कुछ हो रहा है और तख्ता पलट, वही मैंने बोला कि यार शी जिनपिंग 10 रुपए का नोट थोड़ा ना कि जेब में रख के आती है, द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, वो छोटा आदमी थोड़ा ना है। तो कोई बोले कि सर ऐसे गायब हो गया और दिख नहीं रहा इतने दिनों से, आई डोंट थिंक दैट इज फीजिबल। जो भी होगा वो अलग होगा, क्या होगा वो मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया सर कि क्या चल रहा है वहां पे। ये भी हो सकता है कि उसका तख्ता पलट कर दिया हो, ये भी हो सकता है, और ये हो सकता है कि कुछ भी ना हुआ हो। चाइना में एनीथिंग इज पॉसिबल, बट ये यू नो काफी लोग कह रहे थे कि बस उसको मार दिया है, उसको जेल में डाल दिया है, उसको नजरबंद कर दिया है, उसको कैद कर दिया है, घर में उसको बंद कर दिया है। मुझे भी, क्योंकि किसी ना किसी को तो पता लगता है वहां पे, इतने एम्बेसीज हैं, सड़क पे लोग घूमते हैं, लोगों के पास सबके पास फोन हैं, दे अलाउड टू यूज व्हाट्सएप, दे हैव इंटरनेट, एम्बेसीज एंड यूएन पीपल आर अलाउड टू यूज इट इन चाइना, नॉर्मल पीपल। तो मैं कई बार जा भी चुका हूँ चाइना, बट मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि, देखिए ना मैं एक बात बताता हूँ आपको, वो टाइनमेन स्क्वायर की बात थी ना, जब वो टैंक्स आ गए थे, तब तो सोशल मीडिया नहीं था सर, तब तो सोशल मीडिया नहीं था, और तब चाइना में एक ही दो टेलीविजन चैनल हुआ करते थे उस जमाने में, लेकिन उस समय भी लोगों ने वो खबर बाहर निकाल ली थी, जबकि सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो 80s की बात है, लोगों ने फिर निकाल लिया उसको। कोरोना में शहर चाइना के बंद हो गए, निकाल लिया। रियल एस्टेट जब वहां पे फॉल हुआ तो लोगों ने निकाल लिया। तो ये कहना कि शी जिनपिंग की एक भी खबर नहीं निकली चाइना से, ये आई फाइंड इट अ लिटिल डिफिकल्ट टू बिलीव, बिकॉज आई एम एन एनालिस्ट एंड आई वर्क ऑन डेटा, आई वर्क ऑन रियल टाइम यू नो जो अवेलेबल इंटेलिजेंस है मीडिया में, ऑसेंट के ऊपर काम करते हैं हम लोग और वहीं से एनालाइज करते हैं, तो मुझे तो नहीं पता लगा ऐसा कुछ। बट अगेन आई वुड लाइक टू क्वालिफाई माई स्टेटमेंट बाय सेइंग दैट बॉस, चाइना के बारे में आई हैव स्टॉप मेकिंग प्रेडिक्शंस लॉन्ग टाइम बैक। हाँ पता लगा भाई को गड्ढे में डाल रखा होगा, ये भी हो सकता है कि उसको गड्ढे में डाल रखा होगा, चेनी
उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको लाइक को घुमा दिया।
हाँ हाँ यस, लोकलाइक तो आपका सद्दाम का था, आपका कर्नल गद्दाफी का लोकलाइक था, इनके रहते हैं लोकलाइक, जब असैसिनेशन का खतरा होता है तो लोकलाइक को सामने डाल देते हैं लोग। सो दिस इज अ लॉन्ग, ये तो है, यू आर राइट, आप सही बोल रहे हैं।
ये बिल्कुल सही है। जनरल पीआर शंकर के साथ मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया था, तो उनका कहना था कि भाई ये हो या ना हो, लेकिन ये पक्का है कि 10 साल में शी जिनपिंग ने चाइना को तो पीछे कर दिया है, और अब चाइना जो है वो डिक्लाइन पर जा रहा है, और इसको शी जिनपिंग अगले 10 साल के लिए बन जाए, शी जिनपिंग गायब हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाइना का तो फेट उसने सील कर दिया है। क्या सोचते हैं?
मैं बिल्कुल, जनरल शंकर ने जो कहा गलत बात नहीं कही, बिल्कुल सही बात करी है उन्होंने, प्रैक्टिकल बात करी है। अब मैं आपको बताता हूं, जनरल साहब की बात पे आगे ले जाता हूं। सब ऐसा है, भारत के लिए शी जिनपिंग बना रहे और पाकिस्तान में इमरान खान आ जाए वापस, आई थिंक हमारे लिए बहुत हमारे लिए अल्टीमेट सिनेरियो है ये। इससे अच्छा हमारे लिए क्या हो सकता है कि वहां पर इमरान खान है, यहाँ पे शी जिनपिंग है। देखिए, शी जिनपिंग ने क्या करा है ना, जब आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपने लॉन्च करा, आपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया, ठीक है ना, चलिए आपका मन था अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का दुनिया में, आपने बोला कि ये सिल्क रोड थी और ये था पहले ऐसे ट्रेड होता था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फ्लैगशिप वेंचर होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हम हनुमानटोटा पोर्ट में इतने पैसे लगाएंगे, फलाना अफ्रीका में इतने लगाएंगे, आपने पूरा प्लान बनाया। उस समय चाइना की जो इकोनॉमी थी वो ग्रो कर रही थी, तो जब आपने पैसे कमाए थे तब आप उस हिसाब से खर्च कर रहे थे। आज की तारीख में आपकी कमाई बिल्कुल आधी हो गई है, लेकिन आपके खर्चे हुई हैं, चाइना को मार इसीलिए पड़ रही, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। अभी देखिए अमेरिका का क्या कमेंट था, अभी रिसेंट आज ही अमेरिका ने कमेंट करा है कि चाइना सबसे कह रहा है ना कि हमारे जो हमने लोन लिए हैं, पाकिस्तान के दो ही काम है, या तो कहते हैं कि पैसा दे दो, या कहते हैं कि साहब जो पहले दिया था उसको माफ कर दो, मतलब दोनों में से एक चीज तो खरीदो हमारे। तो अब इन्होंने क्या करा कि चाइना ने बोला, ये माफ कीजिएगा, अमेरिका ने बोला पाकिस्तान को कि बस चाइना को तो बोलो लोन माफ करे, तुम दुनिया भर से मांगते फिरते हो, जो तुम्हारे आयरन ब्रदर्स हैं जरा उनको जाके बताओ कि हुजूर वाला जरा हमारे भी लोन माफ करें, क्योंकि आपने मैक्सिमम तो वहीं से पकड़ रखे हैं पैसे, जरा बोलिए उनको। अब उनकी बोलती बंद है, चीन को कैसे बोलें, वो तो गुर्दा कलेजी सारा निकालेगा ना चीन। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जनरल साहब का भी जो एनालिसिस है बिल्कुल ठीक है, शी जिनपिंग हैज डैमेज चाइना परमानेंटली। इनको ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, लोगों को धक्का देना, इनको ये लगा था कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हम धक्का देंगे, लोग वापस धक्का नहीं देंगे। अब लोगों ने वापस धक्का देना शुरू कर दिया, अब चाइना को अच्छा नहीं लग रहा, नाउ चाइना इज नॉट लाइकिंग इट। अब देखे ना, एक जमाने में यह था कि सारे टीवी चैनल कवर कर रहे थे कि बस ताइवान के ऊपर अटैक हो गया, बस अटैक हो गया, बस अटैक हो गया, अभी हो गया, 4 बजे हो जाएगा, 5 बजे, 9:30 बजे तो पक्का बम मार देगा चाइना। क्या हुआ ताइवान का, हुआ क्या सर?
फुस पटाका।
ये ऐसे ही है, ये इन्होंने वही, इन्होंने गलवान में ट्राई करा इंडियन आर्मी को सामने, हम मार देंगे, हम पीट देंगे, हम ये कर देंगे, इंडियन आर्मी वहां पर खड़ी हो गई, अब चाइना कहता है हमें PP-15 से डिसएंगेज करना है। इन तिलों में तेल नहीं है, ये जिसको कहते हैं ना, ये स्टेरॉइड वाला बॉडी बिल्डर है, ये फुका हुआ है अंदर से, इसमें दम नहीं है, वो वाला पहलवानी वाला दम नहीं है इसमें। जब ये लड़ने पे आएगा सब लोग इसके पीछे पड़ गए सर, चाइना के पीछे। तो जनरल शंकर ने जो बात बोली है, दैट हैज अ लॉट ऑफ मेरिट, आई फील दैट हैज अ लॉट ऑफ मेरिट।
क्वाइट राइट, और आपने जो बिल्कुल सही कहा कि हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो है, और ये कहते हैं टू फ्रंट एडवांटेज, जो अभी तक कह रहे थे ना कि साहब टू फ्रंट वॉर, ये टू फ्रंट एडवांटेज है, एक तरफ शी जिनपिंग और दूसरी तरफ इमरान खान। तो इमरान खान अभी तो है नहीं, लेकिन हो सकता है चुनाव में वापस आ जाए, अभी अभी उसने पंजाब में देखिए वापस जीत लिया मोर्चा। ये टू फ्रंट एडवांटेज है, एक तरफ सूखा पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ बाढ़ आई हुई है।
मैंने तो सर वैभव को बोला था कि इमरान खान आ जाएगा या उसके आने के लिए हवन ववन करवाओ, मैं तो कह रहा हूँ पता लगाओ, पंडित जी को बैठाएंगे, पता लगाएंगे इमरान खान का गोत्र क्या है, और बोलेंगे पंडित जी नाम वाम लेके गोत्र पढ़ के जरा इसका हवन कर दो कि जल्दी से पावर में आ जाए, ये आएगा तो बढ़िया रहेगा। ही इज अ एसेट फॉर अस, इमरान खान तो हम चाहते हैं इमरान खान आए, हवन पूजा पाठ करवाएंगे तब आएगा इमरान खान सर।
हाँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी को उसने परमानेंट डैमेज कर दिया, और चीन की
पाकिस्तान को परमानेंट डैमेज कर दिया सर, पाकिस्तान को परमानेंट डैमेज कर दिया इमरान खान ने, और इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं उनको एहसास नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का रिवाज है नहीं वहां पे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, तो क्या है कि उनको ये नहीं पता कि मुल्क चलता कैसे है। इमरान खान ने फौज को डैमेज कर दिया, डिप्लोमेसी डैमेज कर दी, बकवास करके उस आदमी का मुंह रुकता नहीं है, लगातार बोलता रहता है रोज। अच्छा, कोई ना कोई, अगर आप रोज या मैं ही रोज अगर बोलेंगे मीडिया के सामने, कभी ना कभी तो गलत बोलेंगे, क्योंकि उसको डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उसको डेली इंटरव्यू देने हैं, दैट्स हिज किक इन लाइफ, उसका किक वही है इमरान खान का, अपार्ट फ्रॉम द अदर किक दैट ही गेट्स After 7 PM in the evening, उसका एक ये किक है मीडिया वाला, तो उसके दो किक हैं एक दिन में। अच्छा, भाई ने क्या करा कि इकोनॉमी रगड़ दी, डिप्लोमेसी खत्म कर दी, सारे के सारे फॉरेन रिलेशंस खत्म कर दिए उसने, आपके सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दी उसने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसने बर्बाद कर दिया, गद्दार वद्दार कहता है सबको, वो कहता है कि मैं बात ही नहीं करूंगा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात करने को तैयार है, लेकिन जब पीएम था तब कहता था ऑपोजिशन वाले चोर है, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। ही हैज डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, विच इज वाई इमरान खान इज सच एन इनवैल्यूएबल एसेट फॉर इंडिया। मतलब इमरान खान से बड़ा वरदान, इमरान खान से कोई बड़ा नायाब तोहफा भारत को कभी नहीं मिल सकता था। इतना बड़ा ये आदमी, इसने इतना बड़ा काम कर दिया है। विच मैं तो बोल चुका हूं, तो मीडिया में उनका डिस्कशन भी हुआ था कि जितना इमरान खान ने करा, आई डोंट थिंक इंडियन आर्मी, हमारी एयरफोर्स, नेवी मिलके पाकिस्तान का इतना डैमेज कर पाती जितना अकेले इमरान खान ने कर दिया सर। उसने परमानेंट डैमेज कर दिया, उसने जड़ें काट दी पाकिस्तान की।
बिल्कुल, इकोनॉमी की हालत देखिए, अभी 1.16 बिलियन डॉलर्स अभी उन्होंने आईएमएफ से लिए हैं, उसके लिए जो है वो तालियां बजा रहे थे, और तालियां बजाते बजाते अब पता चला कि 20 बिलियन डॉलर का तो फ्लड्स ने डैमेज कर दिया। हमारे यहाँ भी फ्लड्स आते हैं, हम देखते हैं कितनी अच्छी तरह से मैनेज होते हैं जी। सारी रिलीफ जाती है, ड्रग सप्लाई होती है, सारा आपका वो पूरा एक तरह से सोशल कवरेज होता है, सोशल सिक्योरिटी बनती है। वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बेचारे पड़े हुए हैं, और जो फ्लड्स में फंस गए वो फंस गए, उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। कल मैं आरजू काजमी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे अभी तक 25% लोगों के पास भी पूरी तरह से रिलीफ नहीं पहुंची है। ऊपर से बीमारी तो होती है फ्लड्स के बाद में, आप जानते हैं। तो अब एक तिहाई करीब करीब पूरा पाकिस्तान जो है वो पूरा बर्बाद हो रखा है, और ये भी हो सकता है कि ये एक परमानेंट फॉल्ट लाइन जो अभी तक थोड़ा बहुत डॉर्मेंट था सिंध में, उसको और क्रिएट कर दे, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा नुकसान हुआ।
सर सीपैक बहा के ले गया ये, आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर देखिए, सीपैक बहा के ले गया। अब जब पानी नीचे आएगा तब पता लगेगा कितना सीपैक बाकी है, कितना जिंदा है, कितना मर गया सीपैक। दे हैव दीस फ्लड्स हैव डिस्ट्रॉयड। दूसरी चीज है ना सर कि मैं आपको बताता हूँ जो मेरा एनालिसिस ये है कि हमारे यहाँ भी फ्लड्स आए, हमारे यहाँ भी लोगों की जाने जाती हैं। हमने भी देखा जब वेस्ट बंगाल में तूफान आता है, असम साइड में, वेस्ट बंगाल साइड में फ्लड्स आते हैं, ईस्टर्न साइड में खास तौर से जब आते हैं, केरला में फ्लड्स आ चुके हैं, तो हमने देखा कि कितनी बर्बादी होती है। पाकिस्तान की नीयत खराब है, प्रॉब्लम ये है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कि वसाइल नहीं है हमारे पास, हमारे पास वो हमारे पास वो तरीके नहीं है लोगों के हेल्प करने के लिए, बात वो नहीं है। दुनिया क्यों नहीं हेल्प कर रही, क्यों अमेरिका जैसा मुल्क जो है उसने हाथ पीछे खींच लिया, 55 मिलियन डॉलर दिए, 60 मिलियन डॉलर, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। दुनिया ने पीछे हाथ क्यों, दुनिया को पता है इनकी नीयत खराब है, चोर लोग हैं ये, दे आर थीव्स बेसिकली, चोर भी क्या, डकैत हैं ये लोग। अब देखिए ना, साकिब निसार वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस था, उसने बोला मैं डैम बनाऊंगा। साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पैसे इकट्ठा करे, और पैसे इकट्ठा लेके कहता कौन सा डैम, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार, मेरा काम है डैम बनाना। तो बोला जज साहब वो पैसे कहां गए, कहते फिर तुम बच्चों वाली बात कर रहे हो, कौन से पैसे, खत्म हो गए वो यार पैसे वैसे। तो एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पैसे इकट्ठा करता है डैम बनाने के लिए, और फिर गायब हो जाता है पैसे लेके, उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है। वो कहता है उसकी तो मैंने ऐड डाल दी अखबार में, पैसे तो इतने ही इकट्ठा हुए थे कि अखबार में उसकी इश्तेहार छप सकते थे, बस वो छपा दिया मैंने, और क्या, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। सो ये पाकिस्तान में देखिए, मैं सर आपकी इजाजत हो तो एक मिनट और लेके बताता हूं ये है क्यों।
जी जी जी,
पाकिस्तान में फसाद की जड़ है, जो दो दो पासपोर्ट रखने का जो इनको अलाउड है पाकिस्तानियों को ना, कि दो मुल्कों की आप सिटीजनशिप रख सकते हैं, ये सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। ये जिन्ना के साथ भी ये प्रॉब्लम थी, वो बॉम्बे हाउस वाला, जब जिन्ना को एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जिन्ना हाउस जब उसका अटैच करा था, तो जिन्ना ने चिट्ठी लिखी थी भारत में कि भाई मुझे वापस आना है, मैं कहां पे रहूंगा, तुमने मेरा घर क्यों ले लिया। इनका फादर ऑफ ए नेशन ऐसा ही है, बाबा कौम जो इनका है, कि मुझे वापस इंडिया जाना है, पाकिस्तान बना के उसको वापस इंडिया आना था, उसके दिमाग में, इन सबके दिमाग में यही है। आप नवाज शरीफ देखिए, शहबाज शरीफ, सबके पास प्रॉपर्टीज इन्होंने बाहर क्यों बनाई है, एक तो अपना इलीगल पैसा बाहर पार्क करना है, और दूसरी चीज ये है कि ये सब लोग जहाज पे चल रहे हैं सर आज की तारीख में। जब इनको लगेगा कि जहाज के इंजन में आग लगी है, पैराशूट पकड़ के उधर जाएंगे दूसरे मुल्क में। दे हैव नो लव लॉस्ट फॉर पाकिस्तान, इनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। भारत के साथ दुश्मनी करो, उससे पैसे निकलेंगे, अफगानिस्तान में दखल अंदाजी करो, उससे पैसे निकलेंगे। और आज की तारीख में जो पाकिस्तान कह रहा है ना कि हमारा जो लोन है आप डेफर कर दो, दुनिया को कह रहा है, यही बात तो इमरान खान ने पहले बोली थी जब कोई फ्लड नहीं आया था कोरोना में, दुनिया को 140-150 देशों में कोरोना था, सिर्फ पाकिस्तान था जिसने बोला कि साहब हमारे लोन माफ कर दो। मतलब कैमरून तक ने नहीं बोला कि लोन माफ कर दो, पाकिस्तान के तहत लोन माफ कर दो यार। मतलब इतनी जिसको ढिटाई के साथ, इतनी जिसको कहते हैं ना शेमलेसनेस के साथ पैसा मांगते हैं कि अब दुनिया को भी पता लगने लगा है कि यार ये लोग मांगने के लिए आए हैं, और ये विद सच अटर सेंस ऑफ शेमलेसनेस, कोई इज्जत वाली बात नहीं है, कोई वकार वाली बात नहीं है कि नहीं हम एक मुल्क हैं, और कहने को हर एक एंकर 9 बजे बोलता है वहां पर कि हम एटमी ताकत है, एटमी ताकत है, दैट्स इट
हाँ, यूट्यूब पे तो आजकल बोलना बंद कर दिया, वैसे तो वो बोलते
जी
हैं। अब वापस एक
जी
बार चाइना की और बात करते हैं, क्योंकि चाइना की तो इकोनॉमी जो है वो तो बहुत भारी बूम में है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, और जो भी बात कर रहे हैं तो $3 ट्रिलियन प्लस का उनके पास करेंसी रिजर्व है, और ये सब होने के बाद भी उनसे उनका जो सूखा है वो नहीं निपट रहा। हम यहाँ राजस्थान में सूखा होता है तो उसको ऐसे आराम से निकालते हैं, क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है सूखा डील करने की, और ये भाई लोग जो हैं इनके यहाँ सूखा पड़ा हुआ है, तो पता चला कि सारी इंडस्ट्री बंद हो गई उसके आसपास, जो भी थ्री गॉर्जेस डैम जो है उसका प्रोडक्शन बंद हो गया, आपके शंघाई से लेके और ऊपर चेंगडू तक वहाँ की पूरी जितनी इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो ठप पड़ी हुई है। चाइना का ये हाल है, तो ये जो भी हम बात करते रहते हैं कि साहब कि चाइना इमर्जिंग सुपर पावर, ये कौन सी सुपर पावर है?
सर, इसमें रेजिलियंस नहीं है चाइना में, किसी भी चीज की रेजिलियंस नहीं है। मैं सिर्फ सप्लाई चेन की बात नहीं कर रहा, आपने बात करी राजस्थान में गर्मी की, मेरी पहली पोस्टिंग 1994 में हुई थी सर, 1994 सूरतगढ़ राजस्थान। उस समय सूरतगढ़ में रेत उड़ती थी, ये फिर इंदिरा गांधी कैनाल और अनूपगढ़ शाखा या हनुमानगढ़ इन सब जगह आया, आज की तारीख में पूरा हरा भरा हो रखा है। और दूसरी एक और चीज है ना कि जैसा मैंने बोला, दीज आर नॉट रेजिलियंट पीपल द चाइनीज, ये बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, इनका मन बहुत जल्दी, जब ये कुछ हद तक पाकिस्तानियों की तरह है, जब अच्छा होता है तो आसमान पे चढ़ जाते हैं ये लोग, और जब बुरा आता है तो बिल्कुल मोराल इनका बूट्स में चला जाता है, ठीक है ना। आपने बात करी कि साहब वो थ्री गॉर्जेस डैम का वो प्रोडक्शन बंद हो गया, कितना टेम्परेचर होगा सर वहां पे जो इनका सूखा पड़ गया, कितना आएगा? चूरू में 52 पड़ता है सर हर साल, राजस्थान की बात कर
मैं रहा
रहा
हूँ चूरू में, मेरी पोस्टिंग
हूं।
रही है चूरू।
अच्छा, चूरू में भाई लोग सर पे उसाफा वाफा बांध के घूमते रहते हैं
मेरे
और जब
मेरे ऑफिस के जस्ट पीछे जो था एक बड़ा लंबा चौड़ा सैंडी उंदा।
अच्छा तो होता है ना वहां पे, लाइफ गोज ऑन एज यूजुअल जो भी होता है, बट चाइना में बिकॉज इट इज अ फेक इकोनॉमी। और मैं क्यों कहता हूँ सर, वर्ल्ड इज फ्लैट है जो टॉम फ्रीडमैन की किताब है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, और आपने तो पढ़ी है, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि आप जरूर पढ़ें, आपने तो सर पढ़ी होगी। एक तो टॉम द वर्ल्ड इज फ्लैट आप पढ़िए, दूसरी चीज एक और है ना कि जैसे आपने देखा होगा मोटरसाइकिल की एडवर्टाइजमेंट लगती है सर, 70 किलोमीटर अंडर टेस्ट कंडीशन लिखते हैं ना वो एड में, वो एस्ट्रिक्स बनाते हैं, कंडीशन अप्लाई 70 किलोमीटर 75 किलोमीटर अंडर टेस्ट कंडीशन, पूरी चाइना की इकोनॉमी अंडर टेस्ट कंडीशन चल रही है। ये अगर कॉम्पिटेटिव हो जाए दुनिया के साथ विदाउट सरकारी कंट्रोल एंड दखल अंदाजी, ये गिर जाएंगे, इनके बस का नहीं है, इनके इनके बस का नहीं है। भारत की इकोनॉमी जैसी भी चल रही है, हमारी टेस्ट कंडीशंस की इकोनॉमी नहीं चल रही सर, हमारी इकोनॉमी को दुनिया की ग्लोबल हेडविंड्स की थपेड़े भी पड़ी हैं, हमारी इकोनॉमी में लेबर यूनियन का भी मामला है, हमारी इकोनॉमी में हर एक प्रॉब्लम है, उसके बाद चाइना से तेज ग्रो कर रहे हैं। चाइना का एवरीथिंग इज सुपर कंट्रोल्ड, चाइना में इतना ज्यादा कंट्रोल्ड है कि सर चाइना के अंदर ईमेल नहीं भेज सकते आप, जब तक आप अगर आपने ऑल क्लियर नहीं होगा आपकी ईमेल लॉक रहते हैं उनके सर्वर, इतनी तो कंट्रोल्ड है वहां पे माहौल एनवायरमेंट। तो चाइना में जब भी थोड़ी सी दिक्कत होगी जो सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी, ये सब इफेक्ट्स होंगे कि जब डैम प्रोडक्शन बंद कर देगा, शंघाई खाली हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, और गुंजाओं में फर्क पड़ेगा, ये सब होगा, क्योंकि एवरीथिंग इज सुपर कंट्रोल्ड, एवरीथिंग इज सुपर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जब सरकार का कंट्रोल डगमगाएगा तो मुल्क डगमगाएगा, यहां पे लोग रेजिलियंट हैं। अब राजस्थान का एक और चक्कर है ना, आपने राजस्थान का नाम लिया, राजस्थान में हजारों साल से नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट से लुटेरे आ रहे हैं और राजस्थानी उनसे हजारों साल से लड़ रहे हैं। अब जो बंदा हजारों साल से लड़ रहा है आप उसको क्या बोलेंगे, 52 डिग्री टेम्परेचर हो गया तू डर के घर में बैठ जा, उसकी तो बचपन से आदत है ये करने की, तो घूम रहा है वो चूरू में सर, सर पे कपड़ा बांध के चाय पी रहा है 50 डिग्री में, आदमी पागल पागल है क्या, ये कौन 50 डिग्री में चाय, कौन वो चाय पी रहा है चूरू में, उसकी आदत है। सो जस्ट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑन द लाइटर साइड, ये चीनियों के बस का नहीं है सर, ये थोड़ी सी थपेड़ पड़ती है तो ये हिल विल जाते हैं बिल्कुल।
आप सही कह रहे हैं, 1994 की बात कर रहे हैं आप सूरतगढ़ की,
जी
1994 में ही मैं एस कलेक्टर वार्ड में गया था, और 50
अच्छा
डिग्री टेम्परेचर, स्पेशली आप बीएसएफ जहां पे रहती है, बिल्कुल ठीक जी, कॉर्नर जी, पे, वहाँ तो जी, आपके शेड टेम्परेचर जो है वो 55 डिग्रीज बिल्कुल नॉर्मल रहता है वहाँ पे, और वो मैनेज करते हैं। और मैंने तो ये भी नहीं देखा कि राजस्थान में लू से कोई मरता हो, यूपी में तो देखे लू से मरते हुए लोग, राजस्थान में मैंने नहीं देखा कि वो लू से मरता हो।
उनका एक्चुअली क्या होता था कि इन 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 यूपी पीपल आर नॉट यूज्ड टू दैट। एक्चुअली क्या होता है ना सर कि आपके एक डिफेंस मैकेनिज्म हो जाती है। मैं एक नेटफ्लिक्स में एक बड़ी अच्छी सीरीज है, आप जरूर आप देखिएगा, आपके दर्शक भी, राजा रसोई और अन्य कहानियां, राजा रसोई और अन्य कहानियां। वो बताता है कि जैसे हम गुजरातियों को बोलते हैं ना मीठा खाते हैं, शुरुआत कहाँ से हुई है मीठी दाल और मीठा खाने की, क्योंकि टेम्परेचर इतने खराब होते थे गुजरात में रन ऑफ कच्छ एरिया में, सो लोगों को कहते थे कि पानी नहीं पीना है, पानी के साथ गुड़ भी खाना है, क्योंकि आपका बॉडी का शुगर लेवल आपका मेंटेन रहेगा। फिर उन्होंने बोला कि यार गुड़ अलग और पानी अलग क्यों ले जाएं, तो उन्होंने गुड़ के अंदर पानी मिला के गुजरातियों ने पीना शुरू कर दिया कई 100 साल पहले। फिर गुजरातियों ने बोला यार अच्छा अल्टीमेट शॉर्टकट लेते हैं, दाल को ही मीठा बनाओ, कहानी खत्म करो यार, तो मीठी दाल हो गई। सो दैट इज, वो बड़ी अच्छी टीवी सीरीज है, इट्स वेरी नाइसली यू नो रिसर्च्ड। तो यही बात है सर, रेजिलियंस होता है लोगों का अपना, अपने कम्युनिटी का एक रेजिलियंस है, चाइनीज कम्युनिटी का वो रेजिलियंस नहीं है सर। इनको तो स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए जो मार मार के इनको हाँके, जैसे कि यू नो इसने माओ त्सेतुंग ने हाँक दिया, या यू नो चाइना हैज ऑलवेज बीन अ लैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन, जो बोलते थे ये करो तो सारे लोग भेड़ बकरी की तरह उनके पीछे चले जाते थे। वहां पे फ्री विल का कभी मामला रहा नहीं है चीन में सर, आज नहीं रहा, 500 साल पहले नहीं रहा। चाइना वॉज नेवर नोन फॉर फ्री विल, इट वॉज ऑलवेज सेक्लूडेड, ऑलवेज किंग एम्परर ने एक बात बोली सब लोग पीछे पड़ गए। यहाँ पे तो तर्क वितर्क का बड़ा एक ट्रेडिशन है इंडिया में, कि जब जो ऋषि थे वो आपस में डिबेट करते थे लंबी चौड़ी, एंड इवन इन द रिलीजन आप देखिए हमारे धर्म में भी है, निरीश्वरवादी हैं जो कहते हैं कि वी डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एंड देयर हिंदूज वी एक्सेप्ट देम एज हिंदूज। एक्सेप्ट क्या, वो है हिंदू तो हम एक्सेप्ट कौन ना करने वाले क्या होते हैं। आप चाइना में बोल दीजिए निरीश्वरवाद तो छोड़ दीजिए, बोलिए आई डोंट बिलीव इन कम्युनिस्ट पार्टी, पता लगा खानदान गायब हो गया अगले दिन। सो उनका उनका एक अलग मामला है चाइना का। वो बड़े रिजिड जो लोग होते हैं वो पहले टूटते हैं सर, जो बड़े सख्त होते हैं ना, जो ब्रिटल हो जाते हैं जो, और बड़े रिजिड हो जाते हैं, वो पहले क्रैक करते हैं। वो चाइना क्रैक हो रहा है सर, चाइना इज क्रैकिंग नाउ।
सही कह रहे हैं आप। दर्शकों से अनुरोध है कि आज आप मेजर गौरव आर्य को लाइव देख रहे हैं तो आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और साथ में आपको ये भी बता दें कि दी जयपुर डायलॉग्स की एनुअल इवेंट हो रही है 5 और 6 नवंबर को, और मेजर गौरव आर्य भी उसमें आ रहे हैं, उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। आप लोग इसके लिए अपनी जो भी बुकिंग करानी हो वो तुरंत करा लें। ये कुछ आपको सामने हमारे जो स्पीकर्स हैं उनका कुछ 50 में से केवल 4 दिखा रहे हैं आपको, अभी पूरे भी दिखाएंगे कुछ दिनों में। तो हम चलते हैं चीन की बात कर रहे थे, चीन और पाकिस्तान का बड़ा नज़दीकी रिश्ता है, चीन अगर फेल होता है तो पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
पाकिस्तान दूसरा बाप ढूंढ लेगा सर। देखिए पाकिस्तान में स्पाइनल प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो पहले अमेरिका था ना, अमेरिका था उस समय, चाइना तो नहीं था, चाइना के साथ इनके रिलेशन ठीक थे 1950 से, जब से वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करे हैं 1950 से, उसके बाद आई थिंक 50, 51, 52 जब भी है, तो दे हैव डन इट। बट पाकिस्तान दूसरा अब ढूंढ लेंगे अपने, पाकिस्तान को कोई, पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ेगा सर। जो पाकिस्तान का एलीट है, पाकिस्तान का अशराफिया है, वो अमेरिका की गोद में लेट जाएंगे। आप देखिए ना कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैसे होता है पाकिस्तान में, आईडब्ल्यू खुद के लोगों पे करते हैं वो, और किसी पे नहीं करते बेचारे। पाकिस्तानी कौम, अब मैं आपसे पूछता हूं संजय जी, आप ही बताइए, पाकिस्तानी कौम को उनके मीडिया ने यह कन्विंस कर दिया है कि रशिया आपका दोस्त है, अब क्यों है ये? हाँ आप, नहीं दे, आप पाकिस्तानी डिस्कस करते हैं कि रशिया हमारा दोस्त है, चीन तो है ही हमारा दोस्त, रशिया हमारा बड़ा मजबूत दोस्त है। तो मैंने एक दो पाकिस्तानी से पूछा कि क्यों रशिया आपका दोस्त है, कैसे दोस्त है, तो उनके पास कोई आंसर नहीं था, बस उन्होंने बोला कि आपको, आप जलते हैं इंडियंस कि रशिया हमारे क्लोज आ गया है। मैंने बोला हम तो जलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम तो यही खराब लोग, आप तो अच्छे लोग हैं, आप बढ़िया लोग हैं, आप बताइए कि वॉट इज द रीजन फॉर यू नो कि ये क्यों हो रहा है, आप बताइए तो हमें जरा। सो ये बड़ा फिर उनको दिक्कत हो गई, अटैक आ गया उनको कि जनाब ये रशिया, क्या आपने, क्या रशिया से एक लॉलीपॉप खरीदी आपने 2 रुपए की, खरीदी तो हमें बताइए कि हमने साहब उस समय लॉलीपॉप खरीदी थी। ट्रेड के मामले में कुछ नहीं, इनको बस ये है कि एक और सोर्स मिल गया कि हो सकता है, अच्छा ये जो कहता है ना इमरान खान कि मैं तेल ले लूंगा रशिया से, मैं बता रहा हूँ, रशिया इनको 50% डिस्काउंट पे तेल देते, फिर इनकी औकात नहीं तेल खरीदने के, पैसे नहीं
इनके पास उसको रिफाइन करने की कैपेसिटी नहीं।
सर मैं कह रहा हूँ इनके पास सारी कैपेसिटी है, मैं कह रहा हूँ इनके पास सारी कैपेसिटी है, इनके पास पैसे नहीं है। देखिए रशिया जब तेल बेचेगा, रशिया ये थोड़ा ना पूछेगा कि तुम्हारे पास कैपेसिटी है कि नहीं, रशिया सिर्फ ये पूछेगा कि ये डॉलर रखो और ये तेल ले जाओ पड़ा हुआ है। ईरान बगल में है, रशिया के ऊपर सैंक्शन है तो ईरान के ऊपर भी सैंक्शन है सर, और ईरान के साथ तो इनका बलूचिस्तान से बॉर्डर मिलता है, वहां भी बलूचिस्तान, यहां भी बलूचिस्तान, कुछ इधर है कुछ उधर है, आप ईरान से लीजिए तेल। किसने मना कर दिया? सब अपने कौन को झूठ बोलना कि आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान, ये गाने पर नाचते रहते हैं, इनको ये नहीं पता इमरान खान कह रहा है मैं वहां से तेल लूंगा। अरे भाई तुम्हें वहां से रशिया से क्यों तेल लेना, रशिया इतनी दूर है, बगल में ईरान है, बगल में ईरान है, फोन करो ईरान से मंगवा लो, पाइपलाइन भी लगा रखी है इन लोगों ने, ईरानियों ने तो अपने बॉर्डर तक पाइपलाइन खींच दी, ये भाइयों ने थोड़ा पैसा इकट्ठा करा वो भी खा गए, इन्होंने पाइपलाइन नहीं बनाई। खैर पाइपलाइन भी नहीं चाहिए, पर पाइपलाइन वहां तक तो तेल आ गया, आप ईरान से लो तेल, किसने रोका है? नहीं लेंगे ये, बिकॉज दे वॉन्ट एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, ईरान दे लेकिन पैसा ना मांगे इनसे, और अगर किसी को पैसा देना है,
वो टमाटर भेजे थे वो भी इन्होंने फेंक दिए,
वो शिया थे ना सर, टमाटर वो शिया थे, वो वाजिबुल
कत्ल, तेल जो है वो शिया नहीं होगा क्या?
तेल का अलग मामला, पता नहीं तेल शिया होगा नहीं होगा। मैंने 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 पाकिस्तानियों से पूछा कि वो फेसबुक पे बड़ा कहते हैं कि सर वो ना कि यहूदियों का एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, मैंने बोला तुम्हें पता है कि फेसबुक भी यहूदी का है, जिसपे तुम यहूदियों को गरिया रहे हो, जिसपे गाली दे रहे हो यहूदियों को, खुद प्लेटफॉर्म एक यहूदी का है। तो ये समझ नहीं है सर, लिखे पढ़े कम है वो लोग, एजुकेशन इज समथिंग दैट यू नो पाकिस्तान में थोड़ा सा प्रीमियम है एजुकेशन का, एक्सपोजर नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, वही अपने गाँव में जो चौधरी होते हैं वही वाला इनका दिमाग है कि हम ऐसा कर देंगे तो वैसा हो जाएगा, एक दूसरी दुनिया में रहते हैं, प्रैक्टिकल दुनिया में ये लोग नहीं रहते सर।
जो PhD इन इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो भी ऐसी चौधरियों की तरह बात करते
हैं। अब उनका है सर ऐसा, उनका थोड़ा सा कल्चर वैसा है, बट कुछ लोग हैं वहां पे जैसे परवेज हुदबोय हैं, ही इज वेरी ब्रिलियंट, परवेज हुदबोय तो जबरदस्त किस्म का ब्रेन है आदमी का, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे लोगों की इज्जत थोड़ना है सर। पाकिस्तान में जो ब्रिलियंट लोग हैं कुछ उनकी इज्जत नहीं है। इज्जत कैसी होती सर? इज्जत जो है जो चूरन खिला दे पूरी कौम को, वो खुदा बन जाता है, उसको खुदा बना लेते हैं, जैसे इमरान खान को आजकल बना रखा है। तो मैं तो हवन, मैं वैभव से बोलने वाला हूँ कि वैभव भैया शुरू करो, वैभव के घर के टेरिस पे पंडित जी को बुलाएंगे, हवन करेंगे कि जल्दी आए इमरान, भगवान इमरान को लाओ सबसे पहले, क्योंकि फिर हम फिर इंडियन आर्मी को बोल सकते हैं कि तुम लोग 2-3 महीने की छुट्टी ले लो, घर पे जाओ, बीवी बच्चों से मिलो, रिलैक्स करो, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं करना है, खुद ही अपने मुल्क की जड़ें काट रहा है। सो व्हाई शुड यू बॉदर, आई मीन ही इज गुड फॉर अस, इमरान इज गुड फॉर अस,
इमरान इज गुड फॉर अस। आपने कितना बड़ा काम किया है, और जिसको वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ और अपनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बता रहे थे अफगानिस्तान, वही अब उनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, अपनी आर्मी उधर लगानी पड़ रही है, जैसे अंग्रेजों को लगानी पड़ती थी अफगानिस्तान के साथ, उसी तरह से इनको भी लगानी पड़ रही है। तो ये जो अपनी जो ग्रेट विक्ट्री इन्होंने अमेरिका के साथ तो अचीव कर ली, लेकिन खुद के लिए भी एक समस्या पैदा कर ली।
सर ये ना मुझसे किसी ने पूछा कि हमें पैसे क्यों नहीं दे रहा ये अमेरिका, मैंने बोला तुम्हारा वजूद अफगानिस्तान की वजह से था। जो मुल्क सर, जो मुल्क अपने खुद टमाटर पैदा नहीं करता, वो फिर इतनी लंबी लंबी बातें छोड़े तो अच्छा नहीं लगता सर, ये थोड़ा सा ना शोभा नहीं देती है बात कि जो मुल्क अपने टमाटर पैदा नहीं करता। अब देखिए इनको चाहिए थी अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इस्तेमाल करके अफगान तालिबान को पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई। सर वो तो अभी बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक प्रेस रिलीज दिया है कि जो हेलीकॉप्टर गिरा था हमने गिराया था।
हाँ, वो कल गिरा था।
हाँ, उनका हेलीकॉप्टर, वो कह रहे हैं कि अब देखिए सर उस मुल्क के अंदर हेलीकॉप्टर गिरा रहे हैं सर फौज के, इसको मारा उसको मारा दुनिया भर का, लेकिन बात ऐसी करते हैं जैसे वो एक बड़ी मशहूर फिल्म थी ना शतरंज के खिलाड़ी, आपने देखी होगी, सत्यजीत रे की, वन ऑफ द आइकॉनिक मूवीज। तो वहां पे अवध के एरिया के बारे में दो नवाब चेस खेल रहे हैं और पूरे अवध में आग लगी है, द होल अवध इज बर्निंग, और कंपनी बहादुर ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है और सब कुछ, और ये लोग चेस खेल रहे हैं। ये पाकिस्तान का जो अशराफिया है, ये शतरंज के खिलाड़ी के वो खिलाड़ी हैं, 4, 5, 10, 15, 20 जितने भी हैं जो पावर में हैं इनके बड़े बड़े लोग, ये वो हैं, इनका मुल्क जल रहा है और ये लोग चेस खेल रहे हैं, इनको पता ही नहीं सर क्या हो रहा है। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि दे डोंट डिजर्व अ कंट्री सर, दे डोंट डिजर्व अ कंट्री बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू, दे डोंट नो। आपने उसके हाथ में कुछ ऐसा दे दिया जिसको नहीं पता कि इसका करना क्या है। वो चाइनीज में कहावत है ना कि बी केयरफुल फॉर व्हाट यू विश, यू माइट गेट इट. अब दे विश द कंट्री, दे गॉट इट. अब उसका उनको पता नहीं कि इस मुल्क का करना क्या है, इसका क्या मुल्क क्या है, कपड़ा है कि पहन लें, खाना है कि खा लें, करना क्या है इस मुल्क का, चलाना है, ये तो दिमाग में आया नहीं, तो अपने ऑटो पायलट पे चल रहा है वो.
ऑटो पायलट पे चल रहा है, बात सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऑटो पायलट पे चल रहा है, इस बुरी तरह से चल रहा है कि वो पता नहीं कहाँ किसके ऊपर कब कूद पड़े, कहाँ किसके ऊपर कब हो जाए उसका, तो उसका कुछ पता नहीं है. अब वो अफगानिस्तान से अपने आप को पिटवा ले, कब वो बलूचिस्तान से पिटवा ले, कब वो जो है वो चीन के साथ, मुझे अभी याद आता है जो सीपेक का जब उनके यहाँ चल रहा था, तो इनके सारे बैठे बैठे वहां पे शोर करते थे कि भारत हमसे जलता है, सीपेक की वजह से जलता है. आपको याद है मैंने कहा था ना, मैंने आर्टिकल लिखा था, आपको शायद भेजा भी था, आपने देखा होगा.
जी जी.
और इसी तरह से बात करते हैं, हम पाइपलाइन से गैस ले आएंगे रशिया से. मैंने पूछा ट्विटर पे ही पूछा था मैंने, भाई ये तो बताओ गैस तो ले आओगे, वो पाइपलाइन का खर्चा दोगे या नहीं दोगे, क्योंकि रशिया अपने खर्चे से तो नहीं बनाएगा, जानते हैं हम रशिया को, उसने यूरोप का भी जो जितना भी बनाया पूरा पैसा लिया है उनसे, और जिस दिन चाहता उस दिन बंद कर देता है. तो तुम उसका पाइपलाइन का खर्चा दोगे या नहीं दोगे, जवाब नहीं आया मेरे पास किसी पाकिस्तानी से. इंडियंस ने तो बहुत सारों ने उसका जवाब दे दिया.
सर देखिए ना, इनका इनकी प्लानिंग भी ऐसी होती है. मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी चीज, पाकिस्तानियों का माइंडसेट, यू विल रियलाइज दैट व्हाट देयर माइंडसेट इज. इन्होंने बोला 1947 में, 1965 में, 1999 कारगिल में, इनका एक प्लान था सर, और वो प्लान इनका कागजों में, पाकिस्तानी फौज ने वो प्लान लिखा था कि जब हम कश्मीर में घुसेंगे तो कश्मीर का जो आम कश्मीरी मुसलमान है वो हमारे सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा और इंडियन आर्मी पे अटैक कर देगा. तो कोई आया नहीं, तो इनको बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि यार हमने तो हमारे प्लान में तो लिखा है कि आएंगे, वहां पे कोई इनके साथ आया नहीं. वो जो भी कश्मीरियों का इख्तलाफात हों इंडिया के साथ, लेकिन ये बात सच है कि इवन इन 1999 कारगिल, विच इज द मोस्ट रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, कोई नहीं आया सर. द एम वॉज टू आइसोलेट सियाचिन ग्लेशियर एंड द एम वॉज टू ग्रैब, उसके दो थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम था. परवेज मुशर्रफ ने जब लॉन्च करा था ऑपरेशन, ये लिटिल रियलाइजिंग दैट देयर वाज एब्सोल्युटली नो, कश्मीरी मुस्लिम्स ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, कोई नहीं आया इनके, कोई नहीं आया, सब चुप. तो इनके प्लान
तो कारगिल पे तो वैसे भी वो उनके वो नूर बख्शीशिया वाले हैं, तो वो तो इनके साथ तो
कारगिल नहीं सर, इवन हाँ जैसे कारगिल में शिया हैं, इवन बडगाम साइड में जहां पे एयरपोर्ट है वो शिया बेल्ट है, डल्ले के आसपास भी शिया हैं, लेकिन शिया सुन्नी से अलग कोई सुन्नी भी खड़ा नहीं हुआ इनके साथ कश्मीर में. किसी ने हथियार नहीं उठाए जंग के दौरान, मैं ये कह रहा हूँ, लेट मी बी स्पेसिफिक, मैं टेररिस्ट की बात नहीं कर रहा, किसी कश्मीरी मुसलमान ने पाकिस्तान के हक पे जंग के दौरान हथियार नहीं उठाए. और ये इनका
मतलब इंडिया के साथ मजा आता है ना, इंडिया को इतना बेवकूफ बना बना के इतना मजे किए उन्होंने इतने साल तक, पाकिस्तान वाले थोड़ी इनको देंगे. तो सामने जो है वो आपका पीओके, उसमें देख लीजिए क्या हाल है
सर. एक्चुअली सर जो कश्मीर की जो लीडरशिप है, मैं आवाम की बात नहीं कर रहा, जो लीडरशिप है महबूबा मुफ्ती और ये सब फारूक अब्दुल्ला वगैरह, वो सब और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, दे आर इन द सेम गेम. ये सेम, ये जमतारा वाला जो स्कैम है ना, ये भी रन करते हैं, वो भी रन करते हैं. ये इन्होंने क्या करा ना, हमसे कैसे पैसे लिए, जो जो जमातरा या जमतारा, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट वो, बट इन्होंने हमसे कैसे पैसे लिए, मैं हमसे यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से किस तरीके से पैसे लिए, हर समय डराया, हर समय डराया कि अगर हम यहां से चले गए तो कश्मीर अलग हो जाएगा भारत से और खून खराबा हो जाएगा, अगर हम यहां से चले गए तो ये हो जाएगा, अगर हम चले गए तो कश्मीर भारत से निकल जाएगा. तो भारत ने इनको अप्रोक्सीमेटली, जो मैंने टेलीविजन पे मीडिया में फिगर्स देखे, हुरियत कॉन्फ्रेंस और जो अलगाववादी लोग थे उनको करीब ओवर अ पीरियड ऑफ 20-30 ईयर्स 7,000 करोड़ रुपए दिए सर. They have been given sums in excess of 7,000 crore. This is the figure.
इतने incentive के बाद insurgency कैसे खत्म हो सकती है?
हाँ, अब वो देखिए ना कि अगर आपने बोला insurgency, आपने ये नहीं बोला कि insurgency खत्म हो जाएगी तब हम तुम्हें पैसे देंगे. आपने बोला बस तुम हमारी सेक्टर को, बड़ा बल्ले बल्ले चल रहा है, एक ecosystem वहाँ पे create हो गया हुरियत वाला. वो जब यहाँ पे NIA की raids हुई और 370-35 से हटा और बोला कि गिलानी को बकवास करने दो, सड़ता है सड़े, मरता है मरे, हमें कोई लेना देना नहीं है, अपने आप टेम्परेचर डाउन हो गए, क्योंकि आपने उनको एंटरटेन करना बंद कर दिया अचानक एक दिन, आपने नल बंद कर दिया. ये अब्दुल बासित जब था ये पहले भी होता था, लेकिन जब अब्दुल बासित था पाकिस्तान का एम्बेसडर, तो यहाँ पे सर बड़ा जो कश्मीर सॉलिडेरिटी डे में हुरियत वाले आ रहे हैं और यहाँ पे जा रहे हैं पाकिस्तानी एम्बेसी में, और उनके खाने वाने चल रहे हैं और एंटी इंडिया स्पीचेस चल रही हैं, और यहाँ पे जो लिबरल जो तबका था भारत में, लेफ्ट लिबरल तबका, वो कहता देखो यार इंडिया इज सच अ मैच्योर डेमोक्रेसी और हमें गालियां दे रहे हैं, देखो कितनी अच्छी बात है। तो ये तो ये गवर्नमेंट जब आई है उसने बोला है कि यार हमारे हमारा खा रहे हो, हमें गालियां दे रहे हो, रफा दफा करो, कोई नहीं आएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले लगाए पाकिस्तानी एम्बेसी के गेट के सामने, कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया वहां पे ईद मुबारक कहने के लिए। आईबी वाले खड़े हो गए वहां पे, दिल्ली पुलिस वाले खड़े हो गए, बोला पकड़ पकड़ के चमकाओ इनको जो भी आता है, सबको दुरुस्त कर दिया। वो मैटर ही खत्म हो गया, पाकिस्तानी एम्बेसी में जाना और दावतें, सब मैटर खत्म कर दिया। यही होना चाहिए। देखिए बिना डंडे के यार है सर, यार पाकिस्तानी जो है ना डंडे के यार है।
सही बात है, मुझे लग रहा है। लेकिन जैसे आप आपके हमारी विदेश नीति में भी परिवर्तन कुछ दिखता है। डॉक्टर जयशंकर के जो बयान है, विशेषकर जब वो यूएस में जाके यूएस वालों को सुनाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। आज भी उन्होंने कश्मीर के ऊपर उनको सुनाया है, और कल भी उन्होंने उनको खूब सुनाया था F-16 के ऊपर, किसको बेवकूफ बना रहे हो। ये डॉक्टर जयशंकर के कुछ बयानों के बारे में बताएं, उसके बाद फिर हम दर्शकों के प्रश्नों पर चलें।
मैं तो मुझे हर समय डिप्लोमेसी बड़ी बोरिंग लगती थी, मैं आपको बता दूंगा। आई ऑलवेज फाउंड इट वेरी बोरिंग। अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी डिप्लोमेसी की, ना किसी ने समझाया, ना हमने समझने की कोशिश करी। और डिप्लोमैट्स वर ऑलवेज दोस फडी डडी पीपल वेयरिंग नाइस सूट्स एंड टॉकिंग इन अ सर्टेन एक्सेंट, या और बड़े मतलब स्लो मूविंग ग्लेशियल स्पीड पे। डॉक्टर जयशंकर जब से आए ना, आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, और मैंने बोला बंदा ये क्या क्या रहा है यार। डॉक्टर जयशंकर ने स्टेरॉइड्स डाल दिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, अब घोड़े की तरह भाग रही है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। और सिर्फ वो नहीं, वो जिस तरीके से यूरोप को बोला सर, दैट वाज आइकॉनिक। बोला कि जितना हम महीने में तेल खरीदते हैं रशिया से, यू बाय इन एन आफ्टरनून, तुम कौन होते हो हमको बोलने वाले। एंड यूरोप हैड नो आंसर, देयर वाज नो काउंटर टू हिज स्टेटमेंट्स। तो और उन्होंने बोल दिया वी आर $5 trillion इकॉनमी, अभी जाके जो उन्होंने रिसेंटली बोला था वी आर सो अ न्यू इंडिया विथ ऑल आर फॉल्ट्स, गलतियां हमें भी, हमारी पॉलिसीज भी, अभी ऐसा नहीं है कि परफेक्ट है, बहुत गलतियां हम लोग करते हैं, लेकिन अ न्यू रिसर्जेंट इंडिया। तो जब भी डॉक्टर जयशंकर बोलते हैं या कोई भी फॉरेन ऑफिस वाला आज की तारीख में बोलता है ना, तो बड़ा एक जिसको कहते हैं ना कि गर्व की अनुभूति होती है, बड़ा एक लगता है कि हाँ यार हमारा देश, देखो ऐसा लगता है कि वीरेंद्र सहवाग बैटिंग कर रहा है, मजा आ जाता है देख के, है ना। थोड़ा सा फील आती है कि यार क्या गजब का काम करा। तो इट इज सो आपने बिल्कुल ठीक बात बोली, आई अग्री विथ यू। डॉक्टर जयशंकर इज अ रॉक स्टार, एब्सोल्यूट रॉक स्टार।
जो उन्होंने स्पेशली द वन दैट आई लाइक, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, कि दैट यूरोप थिंक्स दैट इट्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन एनी अदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। सो व्हेन वी वर फेसिंग प्रॉब्लम, देन यूरोप टोल्ड अस डू मोर ट्रेड। वो जो था वो दैट वाज अनदर क्लासिक
सर। जितना डॉक्टर जयशंकर का जिस लेवल ऑफ, आई शुड नॉट कॉल इट ट्रोलिंग बिकॉज इट इज नॉट ट्रोलिंग, ही इज स्पीकिंग फैक्ट्स, बट जितने सोफिस्टिकेटेड लेवल पे डॉक्टर, आई डोंट थिंक एनीबडी इन द वर्ल्ड डज दैट, जिस लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन से डॉक्टर जयशंकर दलील करते हैं ना, ग्रेट। हाँ सर, नहीं सर, बंदे में वो एक्सपीरियंस है, वो वेट है, वो बंदे में वजन तो है ना, तो दलील स्पीक
पे अभी जो बोला कल
किसको बेवकूफ बना रहे हो
किसको बेवकूफ बना रहे हो मुझे नहीं लगता आज तक कभी किसी ने इस तरह से कहा हो जाके यूएस में बैठ के। पहले भी बोला था कि भाई वी डोंट नीड योर सर्टिफिकेट्स टू रन।
हां, और इसमें मुझे अच्छी जो बात लगती है ना फॉरेन पॉलिसी की, मोदी जी की और जयशंकर साहब की, मुझे इनकी फॉरेन पॉलिसी में लगता है कि फाइनली यू नो, एक हर समय ये रहा था कि इज इंडिया हियर और इंडिया देयर, सो अब ये बात आ गई कि इंडिया इज विद इंडिया। हमें जब यूएस को मना करना था, चाहे हमारे कैट्सा की तलवार सर पे लटकी थी, हमने यूएस को भी मना करा। अब हमने रशिया को भी बोल दिया कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन इन दिस एरा, अभी ये जंगों का जमाना नहीं है, खत्म कर रहे हैं, लड़ाई युद्ध कर रहे हैं जो आप लोग, और फिर उनको बोल दिया कि हुआ यू फूलिंग। तो सबको ये बता दिया कि देखो मल्टीपोलर वर्ल्ड है यार, तुम ये मत समझना कि एक तरफ चीन है और एक तरफ, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है और एक पोल भारत भी है, और हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है, हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है सर। तो ये बात,
एक पोल भारत भी है निश्चित रूप से। और इसी पॉइंट पर अब हम चलते हैं दर्शकों की ओर। दर्शकों से पुनः अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारी एनुअल इवेंट 5 और 6 नवंबर को, उसको देखते हुए आप हमें सपोर्ट भी करें और उसमें अपने रजिस्ट्रेशन भी करावें। प्रश्न,